जी आकाशवाणी है। अब आप विनय सक्सेना से समाचार सुनिए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 31 माओवादी मारे गए हैं। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 2 अन्य घायल हैं। पुलिस के अनुसार सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए इस अभियान में प्राण न्यौछावर करने वाले 2 सुरक्षाकर्मियों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश इन सुरक्षाकर्मियों के बलिदान का सदा ऋणी रहेगा। गृहमंत्री ने अगले वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न छात्रों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। प्रधानमंत्री कल फ्रांस और अमरीका की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी यह यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिन का एक्शन सम्मेलन कल से पेरिस में शुरू हो रहा है। फ्रांस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमरीका जाएंगे। अमरीका यात्रा के दौरान व्यापार, रणनीतिक सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल प्रयागराज में महाकुंभ जाएंगी। वे गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी। राष्ट्रपति अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर के भी दर्शन करेंगी। वे डिजिटल महाकुंभ केंद्र में आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाकुंभ के बारे में जानकारी लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री आतिशी ने आज उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। सुश्री आतिशी अपनी कालकाजी सीट बरकरार रखने में सफल रही हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से त्याग पत्र देने के बाद पिछले वर्ष सितंबर में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता से बाहर कर 27 साल बाद फिर वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीतकर विजयी हुई है। आम आदमी पार्टी ने केवल 22 सीटें जीती। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद अगले सप्ताह भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी और दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएगी। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आज पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता का काम करने के दिशा निर्देश दिए। सुश्री आतिशी ने कहा कि जनता ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पर अपना भरोसा जताया है और अब विधायकों की जिम्मेदारी है कि वे जनता की सेवा करें। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाना हमारी जिम्मेदारी है। सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और गोरखपुर जंक्शन के प्रस्तावित मॉडल का अवलोकन किया। 52वां विश्व पुस्तक मेला आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिन के इस मेले का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने इसका आयोजन किया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद श्री बीरेन मुख्यमंत्री सचिवालय गए। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज ओडिशा के कटक में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर और 5 गेंद में 304 रन बनाकर भारत को यह मैच जीतने के लिए 305 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 9 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 74 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।